क्रिकेट की कुछ बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दी है। इस बारे में मज़ीद मालूमात जानने के लिए हमारे साथ हमारे खुदूस नुमाइंदे मज़र अरशद मौजूद हैं, जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद हैं। मज़र, बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का। हमारे सुनने वालों को मैच के बारे में और सीरीज़ के बारे में कुछ बताइए।
जी शुक्रिया जैन। जी पाकिस्तान ने जो है अपनी फतूहात का जो सिलसिला यहाँ पिछले तकरीबन 8-9 सालों से जो चल रहा है, खासतौर पर पाकिस्तान के होम ग्राउंड पे, उसको पाकिस्तान ने कंटिन्यू किया है और एक और सीरीज जो है वो पाकिस्तान जीत गया, जो गो के अभी एक मैच बाकी है और ये चांसेस हैं कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज को भी क्लीन स्वीप करेगा, जिस तरह के माजी में पाकिस्तान ने यूएई में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को किया है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान अभी रिसेंटली नंबर वन भी था, लेकिन वो रैंकिंग जो है सब चेंज हुई है, इंडिया दोबारा नंबर वन पे आ गया है। तो पाकिस्तान के दोबारा नंबर वन बनने के लिए ये सीरीज जो है वो 3-0 से जीत बहुत जरूरी है। तो पिछले 9 सालों से जो है वो पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड पे जो है कोई भी जो है वो टेस्ट सीरीज नहीं हारा, और पिछले 9 सालों में पाकिस्तान वही टीम है जो कि अपनी कोई भी होम सीरीज नहीं हारी। इस दौरान पाकिस्तान ने अपनी होम सीरीज 1-2 पाकिस्तान में भी खेली है, और उसके बाद फिर जो वाकयात हुए, जो श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ, उसके बाद पाकिस्तान को अपनी होम सीरीज इंग्लैंड में खेलनी पड़ी, न्यूजीलैंड में खेलनी पड़ी और यूएई में जो है वो 2010 से खेल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी खुशाइन बात है। पाकिस्तान ने जो है अभी इस साल गर्मियों में जब पाकिस्तान की टीम इंग्लिस्तान गई थी, तो वहां पे भी जो है वो सीरीज उन्होंने जो है वो ड्रॉ की थी, जिसके बाद पाकिस्तान की टीम नंबर वन बन गई थी। तो पाकिस्तान ने साबित किया है एक दोबारा के वो टेस्ट क्रिकेट की जो है वो बेस्ट टीम है, और अगर यही परफॉर्मेंस वो आगे न्यूजीलैंड में और उसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया में देते हैं, तो कोई हैरानी नहीं होगी कि पाकिस्तान जो है वो दोबारा रैंकिंग में जो है पहले नंबर के ऊपर आ जाए।
ठीक, मज़र, आपने पहली रैंकिंग का जिक्र किया, पाकिस्तान बहुत मुख्तसर अरसे के लिए पहले नंबर पर आया, और अभी आपने ये कहा कि अगर वापस आना है तो इस सीरीज में क्लीन स्वीप जरूरी है, तो क्या क्लीन स्वीप के बाद पहले नंबर पे आ सकता है या उसके बाद भी मजीद फतूहात चाहिए होंगी?
देखें, ये डिपेंड करता है कि दूसरी जो सीरीज हो रही है उनके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो रैंकिंग के पॉइंट है वो 111 है, जो भारत है उसकी रैंकिंग के पॉइंट 115 है। तो पाकिस्तान अगर वेस्ट इंडीज को ये 3-0 से हरा भी देता है तो वो 115 पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा। तो पाकिस्तान को थोड़ा इंतजार करना होगा कि इंडिया की और इंग्लैंड की जो सीरीज होगी इंडिया के अंदर ही, उसके जो नतीजे हैं वो क्या होंगे, और उसके बाद फिर पाकिस्तान की न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में जो है वो क्या परफॉर्मेंस होगी। तो इन केस अगर इंग्लैंड इंडिया को 1-2 मैचेस हरा दे और पाकिस्तान न्यूजीलैंड में जीते और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करे, तो फिर ये एक उम्मीद है कि पाकिस्तान नंबर वन पे आ जाएगा, लेकिन सिर्फ ये वाली सीरीज जीतने के बाद जो है वो पाकिस्तान नंबर वन पे अभी नहीं आ सकता।
ठीक, सर, अगर मैं 2 टेस्ट मैचेस जो हुए हैं जो पाकिस्तान ने अपने नाम किए हैं उनके बारे में बात करूं, तो उनकी क्या क्या हाईलाइट्स है, झलकियां हैं हमारे सुनने वालों को, अगर आप उनकी समरी दें तो क्या क्या बताएंगे दोनों मैचों के बारे में?
देखिए, पहले तो सबसे पहले मैच में अजहर अली की जो ट्रिपल सेंचुरी है, मेरा ख्याल है कि वो काबिले जिक्र है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। इससे पहले सिर्फ 3 बैट्समैन थे, हनीफ मोहम्मद, इंजमाम और यूनुस खान, जिन्होंने के ट्रिपल सेंचुरी की थी टेस्ट में, और अजहर अली ने जो है वो पाकिस्तान के 4th बैट्समैन बने। और इन कंडीशंस में जो है मतलब कि जहाँ पे इतनी लंबी इनिंग खेलना मुश्किल होता है, क्योंकि यूएई में मुत्तहिदा अरब अमारात में जैसे आपको पता है कि हमें बहुत गर्मी होती है, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और फिर अजहर अली की अपनी परफॉर्मेंसेज के ऊपर जो है वो काफी उनकी जो है अपना बातें की जाती थी कि ये ज्यादा मैच विनिंग इनिंग्स नहीं खेलते, खासतौर पर वनडे क्रिकेट में वो कैप्टन है, तो वो उसका भी उनके ऊपर जो प्रेशर था। फिर वो नंबर 3 के बैट्समैन थे, तो इस सीरीज में उनको एज एन ओपनिंग बैट्समैन खिलाया गया, तो वो भी उन्होंने साबित किया। और फिर क्रिकेट की हिस्ट्री का, टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री का दूसरा डेड नेट मैच भी था वो दुबई में, तो पिंक बॉल के अगेंस्ट भी जो है खेलना वो भी एक थोड़ा जो है वो बैट्समैनों के लिए मुश्किल था, लेकिन पाकिस्तान के बैट्समैन ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और फिर यासिर शाह ने जो है वो उस मैच में आउट किए, और फिर सेकंड मैच में जो है अबू धाबी में मैच के अंदर जो है 10 आउट करना, मेरा ख्याल है कि ये किसी भी बॉलर के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और यासिर शाह ने अपने करियर में दूसरी बार जो है वो एक मैच में जो है वो 10 आउट किए। इस साल उन्होंने लॉर्ड्स में भी जो है वो 10 आउट किए थे, और वो मेरा ख्याल है कि इस टाइम दुनिया के नंबर 1 बॉलर होंगे, क्योंकि मोस्टली उनका जो है वो मुवाजना किया जाता है इंडिया के रवि अश्विन से, लेकिन मेरा ख्याल है कि यासिर शाह को एज थोड़ा इस वजह से ज्यादा है कि वो पाकिस्तान से बाहर भी जो है, सॉरी, अपनी होम ग्राउंड से बाहर भी जो है उन्होंने परफॉर्म किया, जिस तरह इंग्लैंड में लॉर्ड्स में 10 आउट किए, ओवल में 5 आउट किए। तो मेरा ख्याल है कि ये जो है वो मैच की जो है सबसे बड़ी हाईलाइट थी। और फिर यूनस खान जो है वो उन्होंने पहला मैच मिस किया, उनको बुखार था जिसकी वजह से वो पहला मैच नहीं खेल सके, और 2 महीने में उन्होंने कोई कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं खेली थी। एकदम आते साथ ही उन्होंने आके दोबारा सेंचुरी की। तो मेरा ख्याल है कि ये यूनस खान, यासिर शाह और अजहर अली की जो परफॉर्मेंसेज हैं ये जो है वो काबिले जिक्र हैं।
ये बताइए मज़हर, यूनुस खान का आपने आखिर में जिक्र किया, यूनुस खान के बारे में कहा जाता है कि अब शायद उनकी उम्र हो गई, रिटायर कर देना चाहिए, कुछ तनाज़ात का भी शिकार रहते हैं वो, और उसके बाद आके वो सेंचुरी बना लेते हैं, तो क्या उनका फ्यूचर है टीम में?
देखिए, यूनुस खान की सबसे बड़ी एबिलिटी ये है कि वो तब परफॉर्म करते हैं जब उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। मैंने अपने 16 तकरीबन पिछले 16-18 साल से जो मैंने क्रिकेट देखी है और जो कवर की है, मैंने कभी अपनी लाइफ में कोई ऐसा बैट्समैन नहीं देखा जो कि प्रेशर के साथ, प्रेशर जब उसके ऊपर जितना होता है उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी हो जाती है। अभी इंग्लैंड सीरीज में भी जब पाकिस्तान इंग्लैंड गई हुई थी तो शुरू के 3 मैचेस में उन्होंने परफॉर्म नहीं किया और सब कह रहे थे जी कि इनको रिटायर कर देना चाहिए, इनको टीम से बाहर कर देना चाहिए, और उन्होंने डबल सेंचुरी कर दी। और अभी भी जो है, अभी तो चले उनको मतलब कि बुखार था, एक उनकी इलनेस थी जिसकी वजह से उन्होंने पहला मैच छोड़ा, तो लोग ये समझ रहे थे कि शायद उनको पहले कुछ वार्म अप मैचेस खेलने चाहिए, डोमेस्टिक में खेलना चाहिए दोबारा टीम में आने के लिए ताकि वो एक रिदम में है। लेकिन उन्होंने आते साथ ही दोबारा सेंचुरी कर दी, और जिस तरह उनकी एज ज्यादा होती जा रही है वो सेंचुरीज की जो फ्रिक्वेंसी है वो उनकी उनकी उतनी ही ज्यादा होती जा रही है। तो मिसबाहुल्लाह कभी 42 साल की उम्र में पाकिस्तान की टीम में खेल रहे हैं और यूनुस खान अभी 39 साल के होंगे अगले महीने। तो मुझे तो जिस तरह उनकी फिटनेस है, जो उनके एम्बिशन हैं और जो उनका पैशन है और जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, मैं तो हैरान नहीं होऊंगा, मैं हैरान नहीं होऊंगा कि यूनुस खान 2-3 साल और खेल जाए पाकिस्तान के लिए और अभी जो उनकी 33 सेंचुरीज हैं वो उसको 40-45 सेंचुरीज तक जो है वो ले जाए।
क्या बात। ये भी बताइए मज़हर, मुत्तहदा अरब अमारात में ये सीरीज खेली जा रही है, अगर जीत भी जाता है या एक मोमेंटम बरकरार रहता है तो कितना अहम है ये मोमेंटम या कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस मिलेगी टीम को आने वाले दौरों के लिए, ख़ास तौर पर ऑस्ट्रेलिया में जब खेलने आएगा पाकिस्तान, तो इन मैचों को खेलने से कुछ मदद होगी या नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस बहुत मुख्तलिफ होती हैं, ऑस्ट्रेलिया का टूर मुश्किल होता है, तो कितना ज़रूरी है और कितनी प्रैक्टिस मिल सकती है?
देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो भी आपके मैचेस होते हैं वो आपका जो रिदम है उसको इम्प्रूव करते हैं, और अगर आप मैचेस जीतते हैं तो आपको जो है कॉन्फिडेंस मिलता है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जिस तरह आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में कंडीशंस डिफरेंट हैं, तो पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री में कभी भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज नहीं जीता, और लास्ट टाइम जब पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता था वो 1995 में जीता था, तो वो भी तकरीबन जो है वो 20 साल का एक अरसा है कि पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट मैच नहीं जीता। तो नो डाउट कि कंडीशंस बहुत मुख्तलिफ होंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि पिछले 20 सालों में पाकिस्तान ने जितने भी टूर्स किए हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो इस दफा जो पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में जाएगी वो सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट टीम होगी, क्योंकि इस टीम का बैटिंग ऑर्डर बहुत ही एस्टेब्लिश्ड है। आपके पास मिडल ऑर्डर में यूनुस खान, मिसबा हैं, असद शफीक हैं, अजहर अली जो है वो एज एन ओपनिंग बैट्समैन भी जो है वो परफॉर्म कर रही हैं। बॉलिंग में आपके पास यासिर शाह हैं, मोहम्मद आमिर हैं, वहाब रियाज हैं, और ये वो बॉलर्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस के लिए आइडियल बॉलर्स हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में लेग स्पिनर्स जो है वो उनको विकेट मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी तरह वो बॉलर्स जो कि जिनका पेस है और वो बाउंस को जो है वो अपना यूटिलाइज कर सकते हैं, जितना वहाब रियाज हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का यहाँ पे ये जो भी पाकिस्तान जीत रहा है और इंग्लैंड में भी जो पाकिस्तान ने जो सीरीज ड्रॉ की है, इसका नो डाउट एक मोमेंटम जो है वो पाकिस्तान को हेल्प करेगा न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में। गो के पाकिस्तान अपने पिछले 3 टूर्स में ऑस्ट्रेलिया में कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीता, 1999 में भी जो है वो 3 मैचेस हार गया, 2005 में भी और 2010 में भी, लेकिन इन परफॉर्मेंसेज के ऊपर ये उम्मीद रखी जा सकती है कि इस दफा पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया जाएगा तो नतायज जो है वो डिफरेंट होंगे, और मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगर पाकिस्तान वहां पे 1-2 टेस्ट मैचेस जो है जीत भी जाए।
मत सर, आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा मोहम्मद आमिर के हवाले से, उनकी वापसी हुई हालिया और उस पर कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी रही, उन्होंने फिर अच्छी परफॉर्मेंस भी दी, इंग्लैंड का टूर हुआ और भी ये हुआ, तो किस तरह टीम उनकी परफॉर्मेंस को देख रही है और आमिर ने वापस आने के बाद जो कम बैक किया है उसको आप कैसे एवेलुएट करते हो?
देखिये, आमिर ने जो है वो नो डाउट कुछ अच्छे स्पेल्स किए हैं, जिस तरह इंग्लैंड में भी जो है उन्होंने पूरी सीरीज में 12-13 आउट किए, लेकिन उनकी अनफॉर्चुनेटली उनकी बॉलिंग के ऊपर कैचेस बहुत ज्यादा जो है वो ड्रॉप हुए। तो तकरीबन इंग्लैंड सीरीज में कोई 5 से 6 कैचेस जो है उनकी बॉलिंग के ऊपर ड्रॉप हुए, अगर वो कैच हो जाते तो उनके जो रिजल्ट्स और उनकी जो एवरेज है, उनकी परफॉर्मेंस है, वो बिल्कुल डिफरेंट होनी थी। यहाँ पे यूएई में नॉर्मली जो स्विंग बॉलर्स होते हैं जो कि बिल्कुल अपनी स्विंग और सीम के ऊपर रिलाई करते हैं, उनको ज्यादा असिस्टेंस नहीं मिलती। तो अपने करियर में फर्स्ट टाइम जो है आमिर वो यूएई में मैच खेल रहे थे, तो पहले मैच में उनको कोई ज्यादा इतनी हेल्प नहीं मिली, लेकिन फिर भी वो उन्होंने लास्ट इनिंग्स में जो है एक अच्छा स्पेल किया था और वेस्ट इंडीज एक जगह पे जब लग रहा था कि वेस्ट इंडीज हो सकता है मैच को ड्रॉ कर जाए या जीत भी जाए दुबई में, तो उन्होंने एक अच्छा स्पेल किया था। इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी परफॉर्मेंस अभी उस तरह की नहीं है टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह की आज से 6 साल पहले थी जब वो जब भी सारे वाकयात हुए उनके ऊपर बैन लगा, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये आइडियल कंडीशंस होंगी आमिर के लिए। और लास्ट टाइम भी जब पाकिस्तान 2009 में जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड गया था और उसके फॉर्म बाद ऑस्ट्रेलिया गया था, तो आपके उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है कि उन्होंने मेलबर्न में भी 5 आउट किए थे, न्यूजीलैंड में जो है वो उन्होंने पाकिस्तान को मैच जितवाया था। तो मेरा ख्याल है कि ये जो अगले जो 2 टूर्स हैं ये शायद आमिर के लिए भी बहुत उनके लिए बहुत खुशाइंद होंगे और वो बहुत लकी हैं कि उनके कमबैक के फौरन बाद ही पाकिस्तान को जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के टूर्स मिल गए।
मतलब बहुत शुक्रिया ये तफसीलात फराहम करने का।